वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा हे परम तपस्या के पथिको तुम्हें नूतन पथ रचना होगा वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना
आज हम सबके बीच उपस्थित हैं आदरणीय विद्या दीदी जी हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं आप बाल्यकाल से ही पूरे परिवार के साथ विद्यालय में समर्पित हुए आपने साकार मात पिता की पालना ली है आप हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय गंगे दादी जी की छत्र छाया में पले दादी जी से आपने अपने जीवन में अनेक कलाएं भरी तथा तुरंत युक्ति से मुक्ति दिलाने की कला आप में है अनेकानेक विशेषताएं आदरणीय दीदी के जीवन में है आप बुद्धि की धनी हैं और हर कार्य में निपुण हैं चैलेंज को दिल से स्वीकार करती हैं असंभव तो आपके जीवन में दस्तक भी नहीं दे सकता क्योंकि हर कार्य असंभव भी संभव करके दिखाते हैं आप 50 से भी अधिक सेवा केंद्रों का बहुत कुशल रूप से संचालन कर रही हैं और वर्तमान समय कानपुर में अपनी सेवाएं दे रही हैं समय का जिक्र किया जिसने बना वही महान समय को मूल्य दिया जिसने बना वही मूल्यवान तो आदरणीय दीदी जी के मुख से सुनेंगे समय की रफ्तार प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता तो आदरणीय दीदी जी का फिर हम दिल से स्वागत करते हैं आदरणीय दीदी जी
ओम शांति सभी बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति अंतःकरण दिल से बोलेंगे ओम शांति आज इस संध्या वेला में हम आप सभी डायमंड हॉल में उपस्थित हैं और यह हमारा सबका परम सौभाग्य है संगम योग जितना छोटा है उतना महान है उतना ही बलवान है उतना ही मूल्यवान है हम आप सभी बाबा के नूरे रतन संगम युग में बाप को पहचान करके और बाबा को जान करके निश्चय करके बाप का बन गए और समय रहते बन गए और बाबा को भी अपना बना लिया समय रहते क्यों बन गए अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है लेट तो जरूर कहेंगे लेकिन बाप दादा कहते देर आए दुरुस्त आए और देर नहीं कहेंगे कहा गया सुबह का भूला शाम को आ गया तो भी गनीमत है हम सभी बाप से बिछड़े एक कल्प से और चार युग तक बिछड़े रहे द्वापर युग से बाबा को ढूंढना शुरू किया और अनेक प्रकार से ढूंढा मंदिर में मस्जिद में गुरुद्वारे में पहाड़ों में गुफाओं में कंदराओं में जिसने जहां बताया भगवान यहां मिलेगा और जिस रूप में मिलेगा, हर प्रकार से ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। आखिर वो बहुत सुहाना समय आया जब बाप बच्चों को ढूंढने लगा। बच्चे बाप को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन बाप ने बच्चों को ढूंढा। ऐसा ही कहेंगे कि प्यासा कुएं को ढूंढता रहा, प्यास नहीं बुझी, लेकिन कुआं प्यासे के पास चल करके आया। मेरा तो यही अनुभव है और आप सबका भी यही अनुभव होगा। आपने बाबा को ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा, दोनों में से क्या कहेंगे? एक आवाज है कि बाबा ने हमको ढूंढा। तो हम सब कितने लकी हैं और ढूंढ के क्या किया? बाबा ने अपना बच्चा बनाया, बच्चा बना करके अपने गोद का बालक बनाया, हमारी पालना की और हमें बहुत आगे बढ़ाया, अपना प्यार दिया, अपना दुलार दिया। तो बाबा ने सबसे पहले बताया, बच्चे आप मेरे बच्चे हो, मैं आपका पिता हूं। हमने भी स्वीकार किया कि वो हमारा बाप है और पिता ने हम सबको अपने गोद का बच्चा बनाया, ब्रह्मा बाबा के द्वारा अडॉप्ट किया। और गोद का बच्चा क्यों बनाया? अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए। दुनिया में भी जिसके बच्चे नहीं होते वो गोद का बच्चा बनाते हैं कि हमारी संपत्ति का वारिस कौन बनेगा। तो बाबा ने भी हम बच्चों को अपना वारिस बनाया। कितना खुशी होती है, कितना नशा होता है कि हम किसके गोद के बच्चे बने हैं और किसके वारिस बने हैं। वारसा कौन सा होगा? कोई राजा होगा, वो गोद का बच्चा बनाएगा, राजाई दे देगा। करोड़पति होगा, करोड़ दे देगा। लखपति होगा, लाख देगा। लेकिन हम किसके बच्चे बने हैं? तो एक नशा है, खुशी है, हम उस त्रिलोकी नाथ के बच्चे हैं, ज्ञान सागर पिता के बच्चे हैं, जो शांति का सागर है उसके बच्चे हैं। तो अब इस ऊंचे पिता के बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो बाबा ही हमारा शिक्षक भी बनते हैं, क्योंकि भगवान के बच्चे को इंसान नहीं पढ़ा सकता। तो परमात्मा को हमारा परम शिक्षक भी बनना पड़ा। और परमात्मा हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? सबसे पहले तो ये पहचान दी कि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। मैं तुम्हारा पिता हूं, आत्मा का भी ज्ञान दिया, स्वयं बाप ने अपना भी ज्ञान दिया। और मेरे से कब बिछड़े, मूल वतन से आए कितना समय हुआ, वो भी ज्ञान दिया। और मूल वतन में आपका आदि अनादि रूप क्या रहा, और अनादि रूप से जब आदि में आए सृष्टि पर तो शुरुआत की सतयुगी दुनिया का भी पूरा हमको एहसास कराया। तो ऐसे कहें कि हमें तीनों कालों का भी ज्ञान दिया, तीनों लोकों का भी ज्ञान दिया, और ज्ञान दे करके हमको त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकीनाथ बना दिया और त्रिनेत्री बना दिया। तो बाबा ने हम बच्चों को पूरा इतिहास और पूरा भूगोल, जिसको कहें कि हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पढ़ाया, और साथ साथ हमको गणित भी पढ़ाया कि बच्चे जो तुम्हारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, विकार हैं, जिनके कारण तुम दुखी हुए, अशांत हुए, परेशान हुए, उसको माइनस करो, उसको घटाते जाओ, और साथ साथ और भविष्य का अपना भाग्य बनाते जाओ, अपने आप को संपूर्ण बनाओ। तो वो जमा करते जाओ, माइनस भी करो और प्लस भी करो। तो बाबा ने हम बच्चों को गणित भी पढ़ाया, और साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा विज्ञान पढ़ाया। वो वैज्ञानिक चांद पर जाते हैं, और बाबा ने हम बच्चों को तो सूक्ष्म वतन, सूर्य चांद तारागण से पार मूल वतन, वहां की भी सैर कराते, और साथ साथ भविष्य नई दुनिया सतयुग का भी साक्षात्कार कराते। तो एक साइलेंस की पावर भरा, जो साइंस के ऊपर भी साइलेंस की विजय है। तो बाबा ने हम बच्चों का टीचर बन करके हमें पढ़ाया, तो बालक से स्टूडेंट बनाया, और स्टूडेंट का दो मुख्य कर्तव्य होता है, दो विशेषता होती है। पहली विशेषता है स्टूडेंट माना स्टडी, और स्टूडेंट माना रेगुलर, स्टूडेंट माना पंचुअल। अगर स्टूडेंट अपनी स्टडी में रेगुलर है और पंचुअल है, ये दो विशेषता अपना लिया स्टूडेंट लाइफ में, तो केवल पास ही नहीं होंगे, लेकिन जो लक्ष्य है, जो बाबा हमसे चाहते हैं, हमारा जो परम शिक्षक है, उसने हमारे साथ उम्मीद रखी है, और वह उम्मीद हमको बताते हैं बच्चे पास विद ऑनर बनना है। और पास विद ऑनर बनने के लिए ये दो विशेषता बहुत जरूरी है। अभी समय की रफ्तार तो आगे जा रही है, क्या हमारी पढ़ाई भी तेजी से चल रही है? हम अपने आप को देखें कि हम केवल पढ़ रहे हैं या हम अपने लक्ष्य को लेकर के पढ़ रहे हैं। हम ईश्वरीय विद्यार्थी तो बन गए, लेकिन जो विद्यार्थी की विशेषता है उसको हमने मजबूती से अपने जीवन में पकड़ा हुआ है। कभी हम क्लास मिस ना करें, ये नंबर वन विद्यार्थी की पहचान अथवा निशानी है, विशेषता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा संगम युग पर हमको पढ़ाते हैं, और वह परम धाम से रोज आकर के पढ़ाते हैं, एक्यूरेट टाइम पर पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाले टीचर ने कभी छुट्टी नहीं किया, ना संडे छुट्टी है, ना मंडे छुट्टी है और ना कोई त्योहार की छुट्टी है, क्योंकि संगम युग बहुत छोटा है। छोटे से युग में भी जब बाबा का अवतरण हुआ तब से संगम युग चालू हुआ, अभी भी संगम युग चल रहा है और जब तक पढ़ाई नहीं पूरी होगी चलेगा। लेकिन विचार करें कि बाबा को आए हुए 80 साल हो गया, जो 80 साल से पढ़ रहे हैं, जैसे हमारी दादियां, हम 80 साल के बाद पढ़ने आए हैं, पढ़ाई वही है, पढ़ाने वाला भी एक है, सब्जेक्ट भी एक है और लक्ष्य भी यानी ऑब्जेक्ट भी एक है। लेकिन विचार करें कि जो 80 साल से पढ़ रहे हैं, हमने आज एडमिशन ली, 10 साल, 8 साल, 6 साल, 4 साल, कोई 6 महीने के भी होंगे, हमको कितनी मेहनत करनी है। तो समय तो आगे चल रहा, बहुत तीव्रता से चल रहा है और समय किसी के रोके नहीं रुकता। हम पढ़ें या ना पढ़ें, हम पास हों या ना हों, लेकिन समय पास होता जा रहा है, ये तो आप सभी मानते हैं, समय पास हो रहा है। तो समय के साथ अगर हमने समझौता कर लिया, समय तेजी से चल रहा है, हमको भी तेजी से चलना होगा। तो वक्त कम है और मंजिल लंबी है, तो यदि हम अपने मन में ये सोच लेते हैं, अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और ये निश्चय पक्का है कि हमें पढ़ाने वाला हमारा सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर पिता है, हम पास निश्चित होंगे। क्योंकि बाबा के पास कोई पास खातरी नहीं है, अलग से ट्यूशन नहीं है, कोई बाबा कोचिंग के लिए हमको नहीं भेजते हैं, केवल हम दिमाग में बिठा लें हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट केवल एक निशाना रखता है, मुझे स्कॉलरशिप लेना है। फिर दाएं क्या हो रहा है और बाएं क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है और पीछे क्या हो रहा है, वो मुड़ के नहीं देखता। अच्छा विद्यार्थी पास होने के लिए टीवी भी नहीं देखता, कंप्यूटर गेम भी नहीं खेलता, इधर उधर शादी और पार्टियों में भी नहीं जाता। उसका एक लक्ष्य है, एक निशाना है, मुझे पास होना है और समय के अनुसार, और पढ़ाई पढ़ें तो ये असंभव है कि पेपर ना आए। जब हम विद्यार्थी बन गए, विद्यार्थी जीवन में दुनिया के अंदर जो स्कूल है, कॉलेज है, छोटे स्कूलों में तिमाही होगा, फिर छमाही होगा, फिर सालाना होगा और रोज कोई ना कोई टेस्टिंग चलती रहती है। आज ये टेस्ट है, कल वो टेस्ट है, फिर ये टेस्ट है। तो यहां भी बाबा के बच्चों को पेपर ना आए ये असंभव है। हम स्टूडेंट होते हुए ये सोच लेते हैं कि मेरे आगे तो बहुत बड़ी परीक्षा आई है। अगर भाई बहनों को फोन किया जाए, आप आज क्लास में नहीं आए, दो दिन से नहीं आए, क्या समाचार है? कहते बहन जी, बाबा ने बहुत बड़ी परीक्षा ले ली है। अब परीक्षा तो आएगी, क्योंकि हम विद्यार्थी जो हैं, ऐसा कभी है कि बच्चा पढ़े और पेपर ना लिया जाए? ऐसा है संभव? जो समझते हैं कि पेपर ना लिया जाए वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो पेपर लिया जाए वो हाथ उठाएं। देखो, सबके हाथ उठ गए। तो क्या हम बाबा के स्टूडेंट हैं, इतने सुपर स्टूडेंट हैं जिनको भगवान पढ़ा रहे, भगवान भगवती बना रहे हैं, उनके सामने पेपर नहीं आएगा? आएगा। और जब पेपर की घड़ी हो तब स्कूल में ना जाए, पास हो जाएंगे? हम सब ये भूल करते हैं। कोई भी पेपर आया तो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। कौन से स्कूल में? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। इसलिए बाबा ने नाम ही नहीं दिया कि ये सत्संग है, आश्रम है। बाबा ने नाम दिया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बोर्ड लगा है विद्यालय का, विद्यालय माना पढ़ाई, सब्जेक्ट एम ऑब्जेक्ट और पढ़ाने वाला। तो जब पेपर आ जाए, हम स्कूल में ना जाएं, विद्यालय में ना जाएं, पास होना संभव है? क्या विचार है आप सबका? इसलिए आज से ये संकल्प कर लें कि जैसा भी पेपर आए, चाहे वो हमारे तन का पेपर हो, चाहे हमारे मन का पेपर हो, और कभी कभी बाबा कहते बच्चे धन से भी पेपर आता है, बहुत इसके ऊपर व्यापार भी होता है, सर्विस होती, सर्विस भी छूट जाती है कभी कभी, प्राइवेट की भी नौकरी छूट जाती है, ढूंढते हैं, पेपर आता है, लेकिन वो पेपर हमको आगे बढ़ाने के लिए, वो हमारा पेपर है। कभी परिवार की तरफ से पेपर आएगा, अनेक प्रकार के पेपर आएंगे, कभी प्रकृति की तरफ से पेपर आएगा, और कोई नहीं मिलेगा तो बगिया के भूत भी पेपर ले लेंगे, वो भी सताएंगे। ये हमारे स्टूडेंट लाइफ में अनेक प्रकार के पेपर आएंगे। कौन सा पेपर किस घड़ी आ जाए तो हम पेपर के समय स्कूल जाना बंद कर देते हैं। तो जब ये बुद्धि में रखेंगे कि नहीं, हमें तो पास होना है, अगर एक पेपर में हमने समय नहीं दिया, अगले पेपर में निश्चित हम पास नहीं होंगे। इससे ही हमको पता चलेगा कि हम कितना मजबूत हैं, कितना बाबा का हमें साथ और सहारे का निश्चय है, कितना बाप दादा पे भरोसा है। ऐसे नहीं कि जब हमारा समय ठीक होगा तब हम जाएंगे पढ़ने के लिए, तब हम बाबा की मुरली सुनेंगे, या तभी हम बाबा से योग लगाएंगे। पेपर आया इसलिए मेरा योग नहीं लग रहा है, अब मेरा मन बहुत भारी हो गया है, जब रास्ता साफ होगा, बहुत अच्छा होगा, तभी हम आगे दौड़ सकेंगे। नहीं तो एक बुद्धि में रख लीजिए, हम स्टूडेंट हैं, किसके स्टूडेंट हैं? हम सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर के स्टूडेंट हैं। केवल वो हमें ज्ञान नहीं पढ़ाते, साथ साथ शक्ति भी देते हैं, बल भी देते हैं। हम सभी ने प्रार्थना किया है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। यहां हम विश्वास में अपने आप को कमजोर कर देते हैं, तो बाबा इसलिए हमको रोज सम्मान देते हैं, और अधिकांश सम्मान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो हम समय के साथ अपने पुरुषार्थ को तीव्र बना सकेंगे। पेपर आए, पीछे हम उसको पास करते चले और हम आगे पास होते चले। यह हम पेपर बाबा हमेशा कहते, बच्चे ये पेपर टाइगर पेपर है, देखने में समस्या बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन ये कागज का शेर है, इसको आप शेर नहीं समझो, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। हम उससे डर के समस्या बनाते हैं और झूठे शेर से भी डर जाते हैं, तो बाबा हमको भूल जाता है। तो जब ये बुद्धि में होगा, हम स्टूडेंट हैं, हमें पास होना है और पास विद ऑनर होना है, क्योंकि जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा हमारे अंदर लक्षण आएगा, यह निश्चित है। जैसा चित्र रखेंगे वैसा हमारा चरित्र बनेगा। पहले जमाने में घरों में देवी देवताओं के पिक्चर होते थे, चित्र होते थे, बच्चों के अंदर वो संस्कार आते थे। फिर कुछ लोगों ने देशभक्तों के चित्र रखे, कुछ ने भगवान के भक्तों का चित्र रखा, और किसी ने शूरवीरों के चित्र रखे, फोटो तस्वीर रखी। और आज किसकी तस्वीरें लगते हैं, किसके फोटो रखते हैं, आजकल के फिल्मी एक्टरों के। तो जिनका हम चित्र रखते हैं वही चरित्र बनते जा रहे हैं। तो जब हम ये चित्र सामने रखेंगे कि हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, हमारी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना, तो हम विद्यार्थी हैं, पास होते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। दूसरा, हम समय को भी सामने रखें कि समय कितनी तेजी से चल रहा है और हमारी मंजिल कितनी ऊंची है, हमें मंजिल पर पहुंचना है। हम यात्री हैं, बाप दादा हमेशा मुरलीम कहते, बच्चे तुम रूहानी राही हो, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हम छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो कहते राह अच्छी हो, सड़क बहुत अच्छी हो तो हम दौड़ लगा के पहुंच जाएं। लेकिन याद रखिए, कहते जूता अगर मजबूत है तो हम कंकड़ों वाली सड़क पे दौड़ भी सकते हैं, मंजिल को पा सकते हैं, कांटों को भी पार कर सकते हैं। लेकिन अगर सड़क बहुत अच्छी हो, जिसका हम इंतजार करते हैं कि हमें रास्ता साफ सुथरा मिले, तो सड़क बहुत अच्छी हो, जूता भी बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर मेरे जूते में एक कंकड़ आ जाए पांव के नीचे, क्या दौड़ना संभव है? सड़क तो बहुत अच्छी है, रास्ता बहुत साफ सुथरा है, मेरा जूता भी बहुत मजबूत है, और दौड़ने में दिक्कत कहां आ रही है? तलवे के नीचे जूते में एक छोटा सा कंकड़ है, वो चुभ रहा है। तो हमें मुश्किलात कहां आ रही है, हमारे अंदर की कमजोरी, वो हमको दौड़ने नहीं देती है, चाहते हुए भी हम सफर नहीं कर पाते, हमारी यात्रा इतनी तेजी से नहीं चल रही है, क्योंकि वो कंकड़ चुभता है। और चुभता क्या है, हमको किसी ने कुछ कह दिया, ये मेरी शान के खिलाफ है, कहने वाले ने तो एक शब्द कह दिया, हम परेशान हो रहे हैं, तो जो हमारा योग है वो लग ही नहीं पा रहा है, हमारी यात्रा हो नहीं पा रही है, और वो चुभ रहा है, बार बार हमको चुभ रहा है, वो हमको चलने नहीं दे रहा। तो इसी तरह से बाबा हमेशा कहते, बच्चे अगर कहीं उसने कुछ कह दिया, हमें कहीं लगा हुआ नहीं है, हमने उसको स्वीकार क्यों किया। तो बाप दादा हमेशा बताते, बच्चे अगर कोई आपको ऐसी वैसी चीज दे जो आपके काम की नहीं है, क्या आप उसको स्वीकार कर लेंगे, कहेंगे मेरे काम का नहीं है, तो आप उसको स्वीकार क्यों करते हैं। जब हम स्वीकार नहीं करेंगे वो हमको चुभेगा नहीं, अगर उसने कह भी दिया, उसकी सोच, उसका जो दिमाग है, उसकी जो क्षमता है, अपने हिसाब से उसने कहा, लेकिन हम उसको ऐसे ही समझें कि हम उसको माफ कर दें। तो बाबा ने कहा, बच्चे दो बातें जीवन में धारण कर लो, कहीं माफी मांग लो और कहीं उसको माफ कर दो, तो कभी भी कंकड़ नहीं चुभेगा। इसलिए जैनियों के यहां साल में एक दिन आता है क्षमा दिवस, कि 12 मास में अगर हमने गलती की है तो क्षमा मांग लें, अगर किसी ने किया है तो उसको क्षमा कर दें। तो बाबा तो क्षमा का सागर है, और हम बच्चे क्षमा स्वरूप बन जाएं, समाधान स्वरूप बन जाएं, तो हमारी रफ्तार तेज होगी। जो चुभने वाला कंकड़ है या जो कांटा है वो हमारे पैर के नीचे से निकल जाएगा और हम मंजिल तक दौड़कर पहुंच सकेंगे। और जब तक दौड़ना नहीं सीखा है तो बाबा तो कहते, बच्चे उड़ना सीखो, जंप लगाना सीखो, क्योंकि वक्त कम है, मंजिल लंबी है। जब हम कहीं सफर में निकलते हैं, सबका अनुभव होगा, ट्रेन का टाइम हो गया और कोई बहुत नजदीकी मिलने वाला आपसे ओम शांति करे, कुछ हाल चाल पूछना चाहे, और ट्रेन बिल्कुल आने वाली है, उस समय आप क्या करेंगे, खड़े होके बात करेंगे, नहीं करेंगे, कहेंगे हमें बहुत जल्दी है, मेरे ट्रेन का टाइम है, फिर कभी मिलेंगे। तो जब हमारा भी मुसाफरी का टाइम है, वक्त कम है, उस समय हमें वक्त की बहुत कीमत नजर आ रही है, समय की कीमत लग रही है, तो हम कभी भी किसी के साथ ना तो व्यर्थ बात करेंगे, ना व्यर्थ का सोचेंगे, और ना ही व्यर्थ में अपना कीमती समय गंवाएंगे। समय हमारा बहुत कीमती है। फिर बाबा कहते, बच्चे आप केवल स्टूडेंट नहीं हो, आप एक रूहानी योद्धा हो, और माया कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी ना किसी तरह से वार करती है, और कभी कभी तो ऐसा करेगी जो चूहे की तरह फूंक करके काट लेगी, खून भी निकल आएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो हम रूहानी योद्धा हैं। योद्धा अपने विजय के ऊपर हमेशा ध्यान रखता है। वो योद्धा कौन सा जो ये सोचे चलो हार जाएंगे तो कोई हर्जा नहीं है, विजयी बनना चाहेगा, और विजयी बनने के लिए उसको हथियार चाहिए और शक्ति चाहिए, नशा चाहिए। तो हम ब्राह्मण बच्चे भी रूहानी योद्धा हैं। पहले के राजाएं जब लड़ते थे तो उनके पास एक तलवार होती थी, दूसरा उनका कवच होता था जिसको वो झिल्लिम कहते, और वो कवच अभी भी राजाओं के महल में पैलेस में रखे मिलेंगे, और एक ढाल होता था। हम सदा विजयी बनते चलें, कभी भी माया से हार ना खाएं। तो हमारे पास ज्ञान की तलवार है, कोई भी बात है हम ज्ञान से काटते चलें, और योग हमारा कवच है। जब हमने कवच को धारण कर लिया तो माया की गोली नहीं लगेगी। जब माया की गोली नहीं लगेगी तो हम मूर्छित नहीं होंगे, और अगर कोई बात आ गई तो उसके लिए हमारे पास ढाल है। तो बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा आपकी ढाल है, बीती सो बीती कर दो, बीती का चिंतन कभी नहीं करो, क्योंकि अगर हम बीती का चिंतन करेंगे तो हमारा श्वास समय संकल्प शक्ति सब व्यर्थ हो जाएगी, फिर हम हार खाते रहेंगे, तो बाबा के गले का हार नहीं बन पाएंगे, विजयी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए सदा हमारी विजय होती रहे, जो बाबा ने विजयी भव का वरदान दिया है। तो ये तीन अस्त्र शस्त्र हमको सदा रखने होंगे, और इसको सही रूप से इस्तेमाल करना होगा। इसमें हमको आलस, अलबेलापन, सुस्ती नहीं लानी होगी। चलो अभी हम योग नहीं लगाते हैं, तो बाबा ने कहा बच्चे निरंतर योगी बनना है, किस समय कौन सी माया की गोली लग जाए। आप सबको याद होगा 1984 में जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं, उनको यही कहा गया थोड़ी दूर चलना है, क्या करेंगे ये कवच पहन करके, बुलेट प्रूफ सदरी पहन के, बस अभी 5 मिनट ही तो चलना है। लेकिन आप सबको पता है कि 5 मिनट बुलेट प्रूफ सदरी नहीं पहनी, जॉकेट नहीं पहना, उस 5 मिनट की रिजल्ट क्या हुई है मालूम है सबको। तो हम जब अगर ये बुलेट प्रूफ मना सुरक्षा कवच नहीं पहनेंगे, बाबा के योग का कवच नहीं पहनेंगे, तो क्या होगा, फिर तो माया हमको गोली मारेगी, फिर हम बेहोश होंगे, फिर हमें कोई संजीवनी बूटी ला करके दे, हमको कोई सुरजीत करे, नहीं। हम दूसरों को सुरजीत करने वाले बने, हमें कोई सुरजीत ना करे। हम दूसरों की समस्या को मिटाने वाले बने, दूसरे हमें समस्या का रूप ना बने, हम किसी के लिए ना बने। दूसरों के जख्म को भरने वाले बने, हम किसी को जख्मी ना करें। तो ऐसा रूहानी योद्धा, और नशे में कि बाबा ने हमको विजयी भव का वरदान दिया, हम विजयी जरूर बनेंगे। उन योद्धाओं को तो रात को नहीं लड़ना है, दिन को लड़ना है, लेकिन हम वंडरफुल बाबा के रूहानी योद्धा हैं, तो हमें तो रात दिन श्वासों श्वास माया से लड़ना है, और माया 63 जन्मों का दुश्मन है, इतना सहज हमको नहीं छोड़ेगी, प्रलोभन भी देगी। जैसा सुना कहीं माया के वश ना हो जाए, बहुत सारी चकाचौंध मिलेगी हमको। तो हम आगे बढ़ते चले, और बाबा ने परख शक्ति दी है। जैसे हनुमान जी जब सीता जी को जाके शोक वाटिका में रिंग दिया तो सीता जी ने पहचान लिया कि ये राम के दल का ही आया है, ये रावण की सेना वाला राम की अंगूठी नहीं लाके दे सकता। तो हमें भी इतनी पहचान बाबा ने दी है, परख दिया है, वो शक्ति दी है कि ये जो प्रलोभन दिखाई दे रहे हैं, जो आकर्षण दिखाई दे रहा है, ये बाबा का आकर्षण नहीं है। और हमें देखना है कि हमारी इंद्रियां कहीं आकर्षित तो नहीं होती हैं। जहां आकर्षित होंगी, जहां आसक्ति होगी, वहां माया भी आ सकती है। तो ये जरूर चेक करना कि कहीं आसक्ति तो नहीं है, चाहे वो सुनने की आसक्ति हो, कौन क्या कह रहा तो जरा सुन ले, अच्छा हाँ और क्या हुआ, चाहे देखने की आसक्ति हो, चाहे हमें वो जिभ्या की आसक्ति हो, हमारी एक एक इंद्रिय की जो आसक्ति है वहां माया आ सकती है। जब हम देखते हैं कि जो एक इंद्रिय का गुलाम होता है वो अपने जीवन को समाप्त कर देता है, जैसे एक पतंगा है, केवल वो देखने का आंख की रोशनी का गुलाम है और वह रोशनी का सुख भी नहीं ले पाता, अपनी जीवन समाप्त कर देता है, जल जाता है। एक भंवरा है, वो केवल नाक का गुलाम है, खुशबू लेता है, खुशबू का सुख भी नहीं ले पाता और वो बंद होके समाप्त हो जाता है। इसी तरह मछली है, वो जिभ्या की गुलाम है तो वो भी अपने जीवन को समाप्त कर देती है। सब अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं आकर्षण के पीछे। और अगर हमारी इंद्रियां कहीं आकर्षित होंगी, चाहे वो देखने का हो, सुनने का हो, चाहे जिभ्या का हो, तो हमारी स्थिति क्या होगी? फिर हम समय के साथ अपनी स्पीड को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए बाबा ने लक्ष्य दिया कमल फूल समान रहना है, उपराम रहना है, वैराग्य वृत्ति को अंदर में रखना है, ट्रस्टी होके रहना है, वैराग्य वृत्ति रखनी है और राग बाबा से रखना है। तो जितना जितना हम उपराम होते जाएंगे उतना हम हल्के होंगे, और हल्के हो गए आगे बढ़ते जाएंगे। सूक्ष्म चेकिंग हमें अपनी करनी है, बहुत सूक्ष्म। कहते एक मियाँ जी थे और बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। एक फरिश्ता आया, बोला आप जन्नत में चलेंगे, खुदा ने निमंत्रण दिया है। पूछा जन्नत में क्या क्या होगा, तो स्वर्ग का वर्णन किया फरिश्ते ने कि वहां खाने को क्या होगा, पीने को क्या होगा, सोमरा समृत होगा, पहनने को कीम खाप जरी के वस्त्र होंगे, स्नान के लिए इत्र होंगे, चलने के लिए मखमल होगा, सोने के लिए फूलों की सेज, बहुत सारा वर्णन किया, स्वर्ग स्वर्ग का नजारा रख दिया। कहा हम सब लोग चलेंगे, तो मियाँ का पैर बीबी ने पकड़ा, बीबी का बच्चों ने नंबर वार, उनके तो बहुत बटालियन होती है, नंबरवार पैर पकड़ा, फरिश्ते ने उड़ने का वरदान दिया, उड़ता भव। तो कहते छह आसमान तक गए, तो उनकी जन्नत सातवें आसमान में मानी जाती है। तो छह में गए तो पुराने जो संस्कार थे, वो जो उनकी बीवी थी, उनको अंदर से आया बेगम साहिबा को, फिर पूछा कि देखो ऐसा है कि फरिश्ते ने ये तो बताया नहीं कि कपड़ा फटेंगे तो सिलाई किससे करेंगे, क्योंकि इतनी गरीबी थी कि रोज वो सवेरे बच्चों के वस्त्र को सिलसिल के गांठ बना के तब पहनाती थी। वो सुई के संस्कार आ गए। तो कहा ठीक है, सब कुछ तो मिलेगा, तो हम इस यहां से एक सुई ले लें। तो मियां के भी समझ में आ गया, कहा हां सुई तो नहीं बताया फरिश्ते ने कि सुई धागा मिलेगा। तो बच्चे कहे अम्मी जान हम जाएं, कहे अम्मी जान हम जाएं, वो कहीं अच्छा हम जल्दी चले जाएं, कहां रखी है उठा लाएंगे। तो मियां जी बोले तुम सब तो देर लगाओगे, मैं बहुत जल्दी से जाके लाता हूं। आप विचार करो कि जो चेन नंबरवार बनी है, और मियां जी जब नीचे कूदे होंगे तो क्या हुआ होगा, नंबरवार सब कहां पहुंच गए, ऊपर से नीचे कौन लाया, एक सुई ले आई। तो बाबा कहते ये पुरानी दुनिया के संस्कार अगर ये हमारे इमर्ज हो गए, हमारे स्वभाव इमर्ज हो गए, ये मंजिल में कहीं सुई के बराबर भी आ गया कि पुरानी दुनिया में अटक गई कि सुई ले ले, तो हमारा वो जन्नत जहां हम राही हैं, मुसाफिर हैं, और उस रास्ते से कहां पहुंच जाएंगे, इतनी ऊंची हमारी कमाई है। तो साथ साथ ये ध्यान रखिए कि हमारा कहीं पिछले दुनिया की चीजों में बुद्धि योग लौट के ना जाए, क्योंकि बाप दादा हमको जो दे रहे हैं उस दुनिया में सुई की जरूरत नहीं है। और साथ साथ हम आगे पीछे नीचे ऊपर देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे वो चल रहा है, वो तो रोज क्लास में आता नहीं है, वो तो मुरली रोज सुनते नहीं है, हम दूसरों को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन हम केवल विद्यार्थी या योद्धा नहीं है, हमारी चढ़ाई भी है, हमारी मंजिल बहुत ऊंची है। तो ये भी सोचें कि हमारी पढ़ाई है, लड़ाई है, हमारी चढ़ाई भी है। तो जो पर्वतारोही होता है, पर्वतारोही कभी ये नहीं देखता है, उसका लक्ष्य है ऊपर जाना और हिमालय की चोटी पे अपना झंडा गाड़ देना। अगर वो दाएं बाएं नीचे ऊपर आगे पीछे देखेगा कभी चढ़ नहीं पाएगा। और उसमें भी आत्मविश्वास, निश्चय, हम सभी कहते हैं हमको बहुत निश्चय है, हमको बहुत निश्चय है, हमें बाबा पे भी निश्चय है, ड्रामा पे भी निश्चय है, दैवी परिवार पे भी निश्चय है, आने वाली दुनिया पे भी निश्चय है, और जाने वाली दुनिया पे भी निश्चय है, हर बात में हमको निश्चय है। लेकिन फिर भी हमारे मुख से क्या निकलता है, हमारे मन में क्या चलता है। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बाबा बहुत अच्छा है, परंतु ये अच्छा नहीं, ये अच्छी नहीं है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। जब सब कुछ अच्छा है तो ये या वो हमारे मंजिल के ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे सी फादर सी मदर, फॉलो फादर। तो हम ऊंची चोटी पर चढ़ रहे हैं, हमको चढ़ना है, मंजिल को नहीं देखना है। तो समय के साथ साथ हम आप सभी अपनी रफ्तार को पकड़ लेंगे। बस पांच चार दो चार बातें बुद्धि में रखो रोज, और रिवाइज कर लो कि बैठा कौन है। हमारा ज्ञान यही है, कौन बैठा है, कौन खड़ा है, कौन चल रहा है, कौन आ रहा, कौन जा रहा, बस यही हमारा ज्ञान है। कभी कोई दिक्कत आए, बाबा बैठा है, तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। संगम युग चल रहा है, विनाश सामने खड़ा है, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। ये जीवन में रोज हम यही देखते हैं, कौन बैठा है, कौन खड़ा है, कौन चल रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा। हम इसको अपने इस रीति से ले लें तो हम मंजिल के साथ बराबर कदम से कदम बढ़ाते हुए समय की रफ्तार से पहले पहुंच जाएंगे। समय हमारा इंतजार करेगा, हम समय का इंतजार नहीं करेंगे और बाबा की चाहना पूरी करेंगे, अपने आप को संपूर्ण बनाएंगे। ओम शांति।
चलो